नमस्कार हिंदुओं, विष्णु पुराण का पांचवा अध्याय अवेदादि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रराज, सर्ग के आरंभ में प्रभु ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश एवं जल आदि में निवास करने वाले देवता, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तीर्यक और वृक्षादि को जिस प्रकार से रचा और जिस प्रकार से गुण स्वभाव और रूप वाले जगत को रचा, वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पूर्ववत सृष्टि का चिंतन किया तो पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुण प्रधान सृष्टि प्रकट हुई। उस महात्मा से प्रथम अज्ञान, मोह, महामोह, क्रोध और अभिनिवेश नामक पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, अंदर बाहर से तमोमय और जड़ नगादि वृक्ष, गुल्म, लता, विरूत, गण पांच प्रकार का सर्ग हुआ। वारह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा जाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने अन्य सर्ग का ध्यान किया तो तीर्यक त्रोच सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तीर्छा चलता है, इसलिए यह तीर्यक स्रोत कहलाता है। यह पशु, पक्षी आदि नाम से भी प्रसिद्ध है और अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित राह का अवलंबन करने वाले विपरीत ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानने वाले होते हैं। वे समस्त अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त आंतरिक सुख को ही पूर्णतः समझने वाले, दूसरे के स्वभाव को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ फिर चिंतन करने पर एक और सर्ग उत्पन्न हुआ। वह उधर स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में वास करने लगा। वे उधर स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न होने वाले प्राणी, विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि से संपन्न और बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग है। इस सर्ग के उत्पन्न होने पर प्रभु श्री ब्रह्मा जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए जीवों को पुरुषार्थ का असाधक समझ उन्होंने एक और उत्तम सर्ग के लिए चिंतन मनन किया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्त्रोत नाम का सर्ग उत्पन्न हुआ। इस सर्ग के समस्त प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्त्रोत कहलाते हैं। उनके सत्व, रज और तम तीनों तत्वों की ही अधिकता है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील और ज्ञानमय तथा साधक है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुमको अब तक 6 सर्ग सुनाए। उनमें श्री ब्रह्मा जी का प्रथम सर्ग महतत्व है, दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा सर्ग वैकारिक है जिसे इंद्रिय संबंधी भी कहा जाता है। इस तरह बुद्धि से उत्पन्न हुआ यह सर्ग प्राकृतिक है। चौथा मुख्य सर्ग के अंतर्गत पर्वत और वृक्षादि स्थावर है। पांचवा सर्ग जो तीर्यक स्रोत है, उसे तीर्यक यानी कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। छठा सर्ग उद्धर्व स्रोताओं का है और ये देव सर्ग भी कहलाया जाता है। सातवां सर्ग अर्वाक स्रोताओं का है, वह मानव सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह तामसिक और सात्विक है। ये पांच सर्ग विकारी हैं तथा पहले तीन प्राकृतिक सर्ग कहलाए जाते हैं। नौवां सर्ग है कोमार, जो प्राकृत और विकारी है। इस तरह सृष्टि की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और विकारी वैकृत नाम ये 9 मूल भूत सर्ग तुम्हें बतलाए हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनीश्वर, आपने इन दिवादिकों के सर्गों का सूक्ष्म वर्णन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप कृपा करके विस्तार से मुझे सुनाएं। श्री पराशर जी बोले, मैत्रेय जी, समस्त प्रजाजन अपने पूर्व शुभ अशुभ कर्मों से युक्त हैं, अतः प्रलय काल में सबके घुल मिल जाने पर भी वे उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होते। हे ब्रह्म, प्रभु श्री ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में लग जाने पर देवताओं से लेके थावर पर्यत 4 प्रकार की सृष्टि हुई, वह केवल मनोमय थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की और जल की रचना करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति युक्त चित हो जाने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, इसलिए सबसे पहले उनकी जांग से असुर उत्पन्न हुए। फिर हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को त्याग दिया और वह त्याग हुआ तमोमय शरीर ही रात बना। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और हे विप्र, उनके मुख से सत्य प्रधान देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्य स्वरूप दिन बन गया। इसी कारण रात्रि में असुर शक्तिशाली होते हैं और दिन में देवताओं के बल में वृद्धि हो जाती है। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में दूसरा शरीर धारण कर लिया और स्वयं ही पितृगण की रचना कर दी। पितृगण की रचना करने के पश्चात उन्होंने उस शरीर का भी त्याग कर दिया और वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के मध्य स्थित संध्या बन गया। इसके पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे दिव्य श्रेष्ठ, उस शरीर से रज प्रधान मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही प्रातःकाल हुआ। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य बलवान हो जाता है और सायंकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस तरह रात दिन प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों प्रभु श्री ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों ही गुणों के आश्रय हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया जिसके द्वारा भूख उत्पन्न हुई और भूख से काम की उत्पत्ति हुई। तब प्रभु प्रजापति ने अंधकार में रहकर शुदाग्रह सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी को भक्षक करने के लिए उनकी ओर दौड़े। इनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा करो, इनकी रक्षा करो, वे रक्षक बन गए। और जिन व्यक्तियों को हम खाएंगे वे खाने की वासना होने से यक्ष कहलाए। उनकी इस अनिष्ट निष्ठाहीन प्रवृत्ति को देखकर श्री ब्रह्मा जी के सिर के बाल गिर गए, फिर दोबारा उनके ऊपर मस्तक पर लग गए। इस तरह ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अही कहलाए। इसके बाद सृष्टि की रचयिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध वाले प्राणियों की रचना की। वे कपिश पीले वर्ण के बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव वाले एवं मांसाहारी बने। फिर गायन करते समय तुरंत ही उनके शरीर में गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न होने के कारण गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करने के पश्चात प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता से अपनी आयु द्वारा पक्षियों को रचा। फिर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व विभाग से गाय, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गायें, मृग, ऊंट, खच्चर और नयूंक आदि पक्षियों की उत्पत्ति की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे विप्र, प्रधान कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने औषधि और पशुओं की उत्पत्ति करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में शामिल किया। गाय, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे, ये समस्त गांव में वास करने वाले पशु हैं। जंगली पशु व्याघ्रह, दो खुर वाले वन गायें आदि, बंदर, हाथी और पांचवें पक्षी, छठे जल जीवन और सातवें सरीसृप आदि जंगली पशु हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से गायत्री, ऋक और अग्निष्टोम यज्ञों का निर्माण किया। दक्षिण दिशा मुख से यजु, रिहत्साम और उकत की रचना की। पश्चिम मुख से शाम, जगती छंद, वैरूप और अति रात्र की श्री ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की। उत्तर मुख से उन्होंने अथार वेद, एकांत विषाती स्तूम और वैराज छंद की रचना की। इस तरह उनके शरीर से सब ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी देव असुर पितृगण, प्रजापति श्री ब्रह्मा जी देव असुर पितृगण और मानव की रचना करने के पश्चात कल्प का आरम्भ होने पर यज्ञ पिशाच, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि समस्त नित्य एवं अनित्य चराचर जगत की रचना की। उनमें से जिसके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, बार बार रचना होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती। उस समय हिंसा, अहिंसा, सत्य, मिथ्या, धर्म, अधर्म, ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उनको प्राप्त हो जाते हैं। उसी से उन्हें ये अच्छे लगने लगते हैं। इस तरह प्रभु ने स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर में विभिन्नता तथा व्यवहार को पैदा किया है। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता और प्राणियों के वेद के अनुसार नाम, रूप और कार्य विभाग को सुनिश्चित कर दिया। ऋषियों और दूसरे प्राणियों में भी वेदों के अनुकूल नाम और कार्य विभाग उन्होंने ही निश्चित किए हैं। जिस तरह अलग अलग ऋतुओं के बार बार आने पर उनके चिन्ह और नाम आदि पूर्ववत ही रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में उनके पूर्व भाग ही देखे जाते हैं। सृष्टि रचना की इच्छा रूप भक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारंभ की प्रेरणा से कल्पों की शुरुआत में बार बार इसी तरह सृष्टि की रचना किया करते हैं। विष्णु पुराण का छठा अध्याय चारों वर्णों की व्यवस्था, पृथ्वी पर कार्यों के विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी बोले, हे प्रभु, आपने जो अर्वाक स्त्रोता मनुष्यों के संबंध में बतलाया, ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि किस तरह की, कृपया करके आप मुझे ये विस्तार पूर्वक बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्मादि वर्ण जाति को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा और उनके जो जो कर्तव्य कर्म बनाए, कृपया करके आप वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, जगत रचना की इच्छा से युक्त श्री ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उनके वृक्ष स्थल से रजो प्रधान जंघा द्वारा रज और तम युक्त सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने अपने चरणों से एक अन्य प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये चारों ही वर्ण बने। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमश ब्रह्मा जी के मुख, वृक्ष स्थल, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। हे महाभाग, श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चतुर्वर्ण की रचना की थी। यज्ञ से तृप्त होकर देवतागण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वदा कल्याण हेतु किया जाता है। जो मनुष्य सदैव सदाचारी, स्वधर्म परायण, सज्जन और सुमार्ग पर चलने वाले होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है और वे ही लाभ उठाते हैं। यज्ञ से ही मनुष्य इस मानव शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें जिस स्थान की इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री ब्रह्मा जी द्वारा रची गई वह चार वर्ण विभागों में स्थित प्रजा बहुत ही श्रद्धावान, आचरण वाली, स्वेच्छा अनुसार रहने वाली, समस्त बाधाओं से रहित, शुद्ध अतः हृदय वाली, सत्कुल में उत्पन्न होने वाली और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उस प्रजा का चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती थी, जिससे वे प्रभु के उस विष्णु नाम के परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता काल के आरंभ में हमने आपसे प्रभु के जिस काल नाम के अंश का पहला वर्णन किया था, वह अति अल्प सुख वाले तुच्छ और दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। उससे उस प्रजा में पुरुषार्थ का विधातक और अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसको अष्ट सिद्धियां नहीं मिल पाती। उन संपूर्ण सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर पाप की वृद्धि हो जाने के कारण समस्त प्रजा द्वंद और दुख से आतुर हो गई। तब उसने रेगिस्तान पहाड़ और जल आदि के स्वाभाविक पर्वत या नदी के किनारे बसे हुए छोटे टीले बनाए। उन पुर आदिकों में शीत और ताप आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने योग्य घर बनाए। इस तरह शीत, धूप व गर्मी आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका चलाने के लिए कृषि और कला कौशल आदि की रचना की। हे मुनि श्रेष्ठ, गेहूं, राई, उड़द, तिल, धान, सन, चना, ज्वार, जौ, छोटी मटर, छोटे धान्य, कांगनी, बड़ी मटर, कोदो, मसूर, मूंग आदि 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन दोनों प्रकार की 14 औषधियां यज्ञ की योग्य हैं, जिनके नाम हैं गेहूं, कुल्थी, धान, उड़द, कांगनी, छोटे धान्य, जौ और तिल। ये 8 और श्यामक, वनतिल, वेणुयव, मक्का, निवार, गवेधु, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है। इनका जन यज्ञ के लिए ही प्रधान रूप से हुआ है। इन औषधियों द्वारा यज्ञ करने से प्रजा की वृद्धि होती है, इसलिए इस लोक और परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों के लिए परोपकार और उनके लिए पापों को शांत करने वाला है। हे धर्मवानों में सर्वश्रेष्ठ मैत्रेयी, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के निश्चित हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा तथा वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का ठीक प्रकार से पालन करने वाले संपूर्ण वर्णों के लोक आदि की रचना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितरलोक माना गया है। युद्ध क्षेत्र से पीछे न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है। और अपने धर्म का सही ढंग से पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म प्राणायाम शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 उधर व्रेता मुनि है, उनका जो स्थान बताया गया है वह गुरुकुल में वास करने वाले ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वन में वास करने वाले वन प्रस्थों का स्थान सप्त ऋषि लोक है, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है, तथा आत्मा अनुभव से तृप्त योगियों का स्थान मोक्ष अमर पद है। जो निरंतर एकांत सेवा करते हैं और ब्रह्मा चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर वापस लौट आते हैं, किंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का चिंतन करने वाले आज तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। वेदों की निंदा करने वाले, यज्ञों का उच्छेद करने वाले और स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। विष्णु पुराण का 7वां अध्याय। मरीचि आदि प्रजापति गण तामसिक प्रवृत्ति के सर्ग स्वयंभुव मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का विवरण। श्री पाराशर जी बोले, पुनः उन प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर उनके देह शरीर स्वरूप भूतों द्वारा उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय श्री ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले वर्णन किया है कि देवताओं से लेकर सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव भी सभी इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब प्रजापति श्री ब्रह्मा जी की वह प्रजा पुत्र पुत्रादि क्रम से और नहीं बढ़ी तो उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, कुतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वरिष्ठ, इन्हें अपने ही समान मानस पुत्रों की रचना की। पुराणों में ये 9 व्यक्ति ब्रह्मा माने जाते हैं। फिर प्रजापति ब्रह्मा जी ने 9 कन्याओं की उत्पत्ति की, जिनके नाम ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसुया और प्रसूति थे। फिर इन 9 कन्याओं को प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो यह कहकर उन्हें सौंप दिया। श्री ब्रह्मा जी ने पहले दिन सनंद आदि को उत्पन्न किया था। वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे समस्त ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। उन्हें संसार रचना से उदासीन जानकर श्री ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने का क्रोध उत्पन्न हो गया। उन श्री ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोक ज्वाला से जल उठा। उनके क्रोध युक्त टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध पूर्ण ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाश में रुद्र उत्पन्न हुआ। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। फिर श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को विभक्त कर दे ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस रूप ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। फिर उस पुरुष भाग को 11 भागों में बांट दिया और स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्यामगोर आदि अनेक रूपों में विभक्त कर दिया। हे महामुने, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभुव को श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन करने के लिए प्रथम मनु बनाया। उस स्वयंभुव मनु ने अपने साथ उत्पन्न हुई शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर उसके साथ रहने लगे। उस स्वयंभुव मनु ने शत्रुपा से प्रियवत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और उदार रूप और सर्व गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं हुई। उसने अपनी पुत्री प्रसूति को दक्ष के साथ और आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति कन्या के गर्भ से 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई, जिनका नाम था यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ के 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभुव मन्वंतर के नामक देवता कहलाए, और दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं पैदा की। मैं तुम्हें उन सब के शुभ नाम सुनाता हूँ, श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, त्रुति, मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कृति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्निति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमश भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वरिष्ठ मुनियों और अग्नि और पितरों ने स्वीकार कर लिया। धर्म के द्वारा श्रद्धा के गर्भ में काम, लक्ष्मी के गर्भ से दर्भ, धृति के गर्भ से नियम, सृष्टि के गर्भ से संतोष और पुष्टि के गर्भ से लोभ की उत्पत्ति हुई और मेघ के गर्भ से श्रुत, क्रिया के गर्भ से दंड, न्याय और विनय, बुद्धि के गर्भ से बोध, लज्जा के गर्भ से विनय, वपु के गर्भ से व्यवसाय, शांति के गर्भ से शेम, सिद्धि, सिद्धि से सुख और कृति के गर्भ से क्षय का जन्म हुआ। रति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की हिंसा नामक पत्नी थी। हिंसा के गर्भ से दो संतान उत्पन्न हुई जिनमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम अनृत और पुत्री का नाम निकृति। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र उत्पन्न हुए और उनकी पत्नियां माया और वेदना नामक कन्याएं बनी। माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना के गर्भ से नरक द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध को जन्म दिया। ये सब अधर्म रूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके न कोई पत्नी है न कोई संतान, ये सब उधर्व रेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये सब प्रभु श्री विष्णु जी के अत्यंत भयंकर रूप है और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण है और मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस जगत की नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग, नित्य प्रलय का ज्ञान दिया है, आप कृपा करके मुझे इसका विस्तृत स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, जिनकी गति कभी भी नहीं रुकती, निबोध रूप से चलती रहती है, वे सर्वव्यापी प्रभु मधुसूदन निरंतर मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, पालन और संसार करते रहते हैं। हे विप्र, समस्त भूतों का चार तरह का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। इनमें से नैमित्तिक प्रलय ही बाह्य प्रलय है जिसमें जगतपति श्री ब्रह्मा जी कल्प के अंत में शयन करते हैं और प्राकृतिक प्रलय से ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना ही आत्यंतिक प्रलय है और दिन रात जो भूतों का नाश होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्ववादी कर्म से जो सृष्टि रचना होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और अवांतर प्रलय के अनंतर जो श्री ब्रह्मा जी के द्वारा चराचर संसार की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कहलाती है। और हे मनुश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति हुआ करती है उसे पूर्णानाथ में महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित प्रभु श्री हरि विष्णु जी संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का संपूर्ण शरीर में समान भाव से अहनिश संचार होता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों शक्तियाँ त्रिगुण युक्त हैं, अतः जो इन गुणों का अतिक्रमश कर लेता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरणादि के चक्र से छूट जाता है और इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है।